राग। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22/7/92 में प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री राम द्वारा मथानिया में हुआ। राग।
कोई बात खास आई हुई हो तो कोई आप बोलो।
गॉड सरस्वती में जो फैदा हो हत्या को प्रकाश निरंतर रह सके।
ओ सदा निरंतर रह गई। जागृत में स्वप्न में तो रहता ही है, सुसुप्ति भी सहजावस्था वाले की अच्छी आती है। सुसुप्ति में ही फर्क है, जागृत स्वप्न में तो विशेषता से सही है। मानो संसार में कोई दृष्टांत तो बढ़िया नहीं दिखता है, आंशिक दृष्टांत तो है कि जैसे एक पढ़ा हुआ आदमी और एक अपढ़ आदमी है, तो पढ़े हुए की विद्या कोई स्वप्न में भूल थोड़ी जाती है, सुसुप्ति में भूल जोड़ी जाती है। जो जागृति में आ रहती है वो स्वप्न में सुसुप्ति में रहती है, परंतु ये पूरा दृष्टांत ठीक नहीं खटता। सहजावस्था प्राप्त होने पर क्या होता है इसको ठीक तरह से, जब तक सहजावस्था प्राप्त न हो जाए तब तक इसको समझना कठिन है। मामूली विषय होता है, जैसे जिह्वा का विषय है, सुन लिया कि बीकानेर की मिस्त्री अच्छी होती है, तो मिस्त्री अच्छी होती है, जिसने मिस्त्री नहीं खाई है वो पूछे कि मिस्त्री का स्वाद बताओ कैसा होता है, कि मीठा होता है, कि बता सकते ऐसी होती है कि नहीं, मीठी होती है, तो चीनी जैसी होती है, चीनी जैसी नहीं होती, मीठी होती है, दाख खारूस नहीं नहीं मीठी होती है। तो जो बता सके कोई आदमी, किसी की ताकत है क्या मिर्ची की मिठास बता सके? नहीं बता सकता। जब एक एक जिह्वा का विषय स्थूल वो भी जब तक न चखे तब कैसे बता दे? ऐसे सहजावस्था है, उसकी बात जानने वाला भी बताना चाहे तो कैसे बता दे? तो मिस्त्री का मिठास भी नहीं बता सकते तो सहजावस्था की बात कैसे बताओ? आप उसे सुसुप्ति में, हम कहते जागृत में कैसे बतावे? जागृत स्वप्न सुसुप्त जागे रही, इसमें कैसा होता है? समाधि से भी विघटन होती है। जागृत स्वप्न सुसुप्ता मूर्छा समाधि 5 अवस्था होती है। जागृत स्वप्न सुसुप्त 3 तो ये होती है, एक मूर्छा अवस्था होती है बेहोशी, और एक समाधि 2 अवस्था होती, 5 अवस्था होती है। तो 5 अवस्था में उसे क्या फर्क होता है नहीं बता सकता। तो सुप्ति अवस्था में कैसे बता भाई? सहज अवस्था को यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम व्यास्यसि पांडव। भगवान कहते हैं जिस तत्व के जानने के बाद इस प्रकार का मोह फिर नहीं होगा। अब जिस प्रकार का भी मोह है, इस प्रकार का मोह नहीं होगा। और क्या बता ये न भूतान्य से आत्मा नहीं है तो मैं अपने में देखेगा परमात्मा में देखेगा तो अपने में देखेगा परमात्मा में देखेगा इसको भी कैसे बतावे। सहजावस्था की बात प्राप्त करनी चाहिए केवल कहना सुनना नहीं। तो इस बात ये कठिन है परंतु एक बात बताओ है बहुत सुगम जैसे हर एक आदमी चलता फिरता रहता है उस वक्त में कोई काम है इनको क्रोध है इनको लोभ है इनको मोह है ना कोई चिंतन है ना मनोराज्य है स्वतः स्वाभाविक अवस्था है। तो उस अवस्था में स्वतः अवस्था ऐसी है उसमें कोई कोई विशेष कुछ नहीं होता चिंतन कुछ नहीं है कोई काम धंधा करना है कोई लगन है कोई चाहना है कुछ नहीं होता। तो उस अवस्था में कैसी अवस्था होती है बताओ। साधारण हम आदमी है हम आदमियों की जो साधारण अवस्था है जिसमें कोई आना है कहीं जाना है कोई मनोराज्य है कुछ करना है कोई लगन नहीं है कोई काम है न क्रोध है न लोभ है कोई उस समय में कोई वृत्तियां नहीं है ऐसी वृत्ति अवस्था में आपकी अवस्था कैसी होती है बताओ। अरे अपने में मस्त नहीं बैठा है अपने में वो अपने जानते ही नहीं अपने क्या होता है अपने में अवस्था मस्त बैठा है अपनी अवस्था क्या होती है बताओ। अपनी अवस्था क्या है उसको वर्णन करो अपनी अवस्था का वर्णन करो। तो ऐसी सहज अवस्था होती है सहज अवस्था नाम ही इस वास्ते उसका वो सहज है उसमें कोई कृत्रिम नहीं है कोई बनावटी नहीं है कुछ करना नहीं है कुछ सोचना नहीं है कुछ समझना नहीं है न भूत अवस्था कोई भूतकाल की बात है न भविष्य का चिंतन है न वर्तमान का कुछ चिंतन है कुछ नहीं है। तो वो चिंतन नहीं है वो सहज है उसकी परंतु सहज अवस्था अज्ञानी की ज्ञानी के दोनों में फर्क रहेगा कि नहीं। एक अभ्यास करता है एक अभ्यास नहीं करता है दोनों की स्थिति में फर्क रहेगा। तो सहज अवस्था की बात कौन समझ सकता है थोड़ी बहुत वो समझ सकता है जो साधन में बड़ा ऊंची अवस्था हो गई है भजन ध्यान करते हुए बहुत अच्छी अवस्था हो गई है दूसरी तीसरी भूमिका हो गई है वो अलबत्ता थोड़ा सा समझ सकता है। हर एक आदमी क्या समझे उसमें क्या होती सहज अवस्था परंतु ये थोड़ी सी आपको बताई वो स्वाभाविक है उसमें कोई चिंतन नहीं कोई करना नहीं कहीं जाना नहीं किसे लेना नहीं किसे देना नहीं कुछ विचार नहीं ऐसी अवस्था होती है तो स्वाभाविक अवस्था होती है। वो जैसे अज्ञानी की स्वाभाविक अवस्था होती है ऐसे ज्ञानी की भी स्वाभाविक अवस्था होती है उसको सहज अवस्था कहा है। गीता में अज्ञानी का दृष्टांत दिया गीता में ज्ञानी को समझाने के लिए अज्ञानी की दृष्टांत अज्ञानी की बात बता समझाया याद है। हाँ बताओ ज्ञानी को समझदार को कैसे कहना चाहिए तो सकता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति जैसे आसक्त पुरुष भोगों में क्रियाओं में द्रव्य में पदार्थों में व्यक्तियों में जिसकी आसक्ति है पूरा मेरा है ऐसे आसक्त पुरुष यथा कुंती जैसे करते हैं ज्ञानी को वैसे करना चाहिए, समझे। परंतु वो सकता कर्म नहीं, वो असक्ता कर्म में आसक्त करे वैसे ही करना चाहिए। तो यथा और तथा भी है उसका, यथा कुंती जैसे करे वैसे ही करे। श्लोक संग्रह, अब वैसा ही करे जैसा ज्ञानी करे वैसा ही उसको आचरण करना चाहिए। पर वो आचरण कैसे करे तो उसका आचरण होता है सक्ता कर्म, कर्म में आसक्ति पूर्व। तो आसक्ति पूर्व करता है वहां लोक संग्रह चिकीर्षु, ये चिकीर्षु है ना। तो सक्ता में इच्छा है भोगों में, ऐसे चिकीर्षु में भी इच्छा है, कर्तुमिच्छु चिकीर्षु करना चाहता है, इच्छा समस्या नहीं है। तो इच्छा क्या है, लोक संग्रह की इच्छा है, लोक संग्रह चिकीर्षु, लोक संग्रह मान सबका उद्धार हो, किसी का पतन न हो, सब लोग अपने साधन में लगे, पदार्थों में संसार में न लगे, राग द्वेष नहीं करे, वे जैसे मर्यादा में चले, उस मर्यादा का सुरक्षण रखने के लिए वो करे। कर्म में आसक्त है वो तो करे, कर्म में आसक्त वे नहीं रहना जो राग द्वेष पूर्व करते हैं, उनका उदाहरण नहीं है। जो मर्यादा में चलते हैं, अपने वर्ण और आश्रम की मर्यादा में रहते हैं, वो जिस प्रकार करते हैं उस प्रकार से वो काम करे। तो प्रकार प्रकार तो है उनका, जो कि आस्तिक है, शास्त्रों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, वर्ण धर्म को मानते हैं, आश्रम धर्म को मानते हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं। ऐसे समझदार आदमी जैसे काम करे वैसे करे। तो प्रकार में यथार्थ तथा लिया गया, तो प्रकार जो उनका ले लिया, परंतु उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, जो भोगों में आसक्त है उसकी तो इच्छा है पदार्थ मिले, भोग मिले, कम से कम, कम से कम धन धन मिले और सुख मिले, ये दो, चाहे इन दोनों में एक हो, चाहे दोनों हो, धन मिले हो चाहे भोग मिले, चाहे भोग मिले चाहे धन मिले, चाहे दोनों मिले चाहे तीनों मिले, सुख भी मिले भोग भी मिले, माना भी सत्कार भी हमारा बना रहे, ऐसे करते हैं तो वो नहीं यथा कुर्वन्ती, तो वो नहीं रहना, ऐसी न चाहने वाला करे वैसे करे। तो करने में एक बात बताई, तो करने की बात बताई, परंतु तथा कुरिया चिकीर्षु लोक संग्राम, लोक संग्रह चाहता हुआ, अब लोक संग्रह चाहता हुआ करे, तो लोक संग्रह का मतलब क्या कि लोग उन मार्ग में न चले जाए, सन्मार्ग में बर्ताव करे, अच्छे काम में चले, इस बात को चाहता हुआ। तो जैसे अज्ञानी की अज्ञानी को आदर्श बताया, ऐसे ज्ञानी को भी आदर्श बताया है, काम से ज्ञानी को आदर्श बताया, यहाँ आदर्श अज्ञानी को बताया, वहां ज्ञानी को आदर्श बताया, बोलो कृष्ण विशाल विचलित न करे, पर वो नहीं यदाचरती श्रेष्ठ तत्वे तो जाना, जो लोग करते हैं कैसे करते हैं, यदि यद आरती श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, तथ्य विद्रोह जनक, दूसरे लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष अपना मान्य आदमी करते हैं, इसी तरह से दूसरे पुरुष करते हैं। और सही है तो प्रमाणों के रूप से जिसको प्रमाणित कर दे उसके अनुसार लोग करते हैं। मानो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं और श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, वैसे लोग सब करते हैं। दो उदाहरण बताया, एक तो करते हैं और कहते हैं। तो इसमें आदर्श हुआ ज्ञानी पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। ज्ञानी भी है, साधक भी है, श्रेष्ठ पुरुष है समाज में जो श्रेष्ठ पुरुष है। तो वो यहाँ पर श्रेष्ठ पुरुष आदर्श हुआ, दूसरे पुरुष अनुयायी हुए। सत्ता करना कर्मण्य विद्वांसों में आसक्त पुरुष है जो मर्यादा में चलने वाले, वे आदर्श हुए और ज्ञानी अनुयायी हुआ। तो आदर्श अनुयायी पुरुष पलट से उलट पलट कर दिया। पर इन पर भी आदमी कैसे समझे, ठीक नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते कि श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है तो श्रेष्ठ पुरुष क्या, तो जो लोग काम करते हैं उनमें श्रेष्ठ पुरुष क्या होगा, उनमें श्रेष्ठ पुरुष होगा जो समाज में मुख्य माना जाता है। मुख्य कौन माना जाता है, जो पंच होता है, जो धनी होता है, जो संसार में प्रतिष्ठित होता है, वो मुख्य माना जाता है। तो उस तरह से लोग करते हैं, ये करना चाहिए आदमी दिया गया, ज्ञानी को तो आज्ञा नहीं, और वो आज्ञा नहीं दी है। वे करते हैं, करते हैं तो वे जिसको श्रेष्ठ समझते वैसे ही करते हैं। तो वैसे क्या करते हैं कि धनी लोग जैसे झूठ कपट बेईमानी करते हैं, ऐसे निर्धन को झूठ कपट बेईमानी करनी चाहिए। वैसे करेंगे और क्या करेंगे। लोग कहे भाई तुम आज झूठ बोलते हो, बड़े 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 आदमी बोलते हैं झूठ, हम क्या बोलते हैं। तो बड़े बड़े बोलते हैं भाई आदर सुना नहीं, पूज नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ। एक बात और याद आ गई बताऊ, विशेष बात है। एक राम अवधेश को मारा हुआ, उसमें भय रोष राम ने मारा, भगवान को रीस आ गई, राम को मार दिया। तो भगवान को भी रीस आ गई, मार दिया तो अपने रीस करनी चाहिए, मानो चाहिए तो वह ठीक बैठेगी। यह बात ये ज्यादा चलती श्रेष्ठ, राम जी श्रेष्ठ कौन होगा, तो उसी गुरु तो ये बात बैठेगी नहीं। ये तो स्वभाव बताया, यज्ञाचरती श्रेष्ठ किसके लिए बताया गया, ये भी बताया अच्छे आदमियों के लिए। बीसवां श्लोक कैसे है,
कर्मणि
आस्था जनकादे, जनकादिक श्रेष्ठ पुरुष भी कर्मों से ही तत्व को प्राप्त हुए हैं। तो कर्मों से ही तत्व को प्राप्त हुए तो वैसे ही कर्मों से आप भी तत्व को प्राप्त हो। तो कर्मों से कैसे प्राप्त हुए, तो यज्ञ दाता थी श्रेष्ठ, वहां आदर्श श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी श्रेष्ठ पुरुष कौन सा, जिन कर्मों से सिद्धि हो जाए वो लोक संग्रह। तो दोनों में बात एक ही है, चाहे ज्ञानी को आदर्श मानो चाहे अज्ञानी को आदर्श मानो, पर श्रेष्ठ पुरुष करता है करो। अब श्रेष्ठ पुरुष कौन सा लेना चाहिए, एक बात याद आ गई, वो ये आई कि बड़े आदमी कहते हैं तो उसमें दृष्टांत देते हैं कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई, रवि पार को सुरसर की नहीं। तो समर्थ को दोष नहीं है, असमर्थ कौन, जो धनवान है, राजा महाराजा है, सब प्रशासन करता है, वो समर्थ। तो ये अर्थ नहीं लिया जाएगा, ये अर्थ अंदर सब जाएगा। क्यों सर,
आगे उदाहरण दिए
हैं,
आगे उदाहरण दिए हैं
क्या,
सूर्य का दिया है।
हाँ, तो समर्थ को नहीं दोष को, समर्थ किसका नाम है, समर्थ नाम किसका है, जैसे यहाँ श्रेष्ठ पुरुष कहा तो श्रेष्ठ पुरुष समर्थ पुरुष, समर्थ पुरुष श्रेष्ठ पुरुष, तो श्रेष्ठ पुरुष कौन सा होता है? जो धनवान हो, राजा हो, पंच हो, मुख्य हो, ये नहीं है। रवि पावक सुर सरी की नहीं श्रेष्ठ समर्थ, समर्थ वो है कि दूसरे को दबा दे, उसका नाम समर्थ नहीं है, उसका नाम तो डाकू है, चोर है, बदमाश है, उसका नाम बलवान है, वो ज्यादा डाकू डाका डालता है, वो पुरुष होगा फिर समर्थ, क्यों समर्थ हो असमर्थ को गिरा दे, तो समर्थ उसका नाम नहीं है कि दूसरे को शासन करे, दूसरे ताड़ना करे, लूट रहे, उसका नाम समर्थ नहीं है। समर्थ नाम उसका है जो कमजोर को भी बलवान बना दे, उसका नाम समर्थ है। शक्तिशाली का नाम समर्थ नहीं है। सूर्य जैसे गंगा जल को खींच लेता है, ऐसे पेशाब को टट्टी को भी खींच लेता है, उसको सुखा देता है, है जी? सुखा के शुद्ध जल बना दे, तो मैले को भी शुद्ध बना दे, उनका नाम समर्थ है। रवि पावक अग्नि है जिसमें आहुति भी डालो, चंदन आदि के जिनको मार दे, मुर्दे को भी बाल दे, तो मुर्दे को बाल दिया तो अशुद्ध हो जाएगी, तो अशुद्ध होती है अग्नि, अशुद्ध नहीं होती, ऐसी बात नहीं। ऐसे ही गंगा जी तीन शांति है, रवि पावक सूर रवि तीन बताया, तो तीनों जो समर्थ बताने का तात्पर्य असमर्थ को समर्थ बनाने वाले, अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाले, अपवित्र को पवित्र बनाने वाले का नाम समर्थ है। पंच हो गया समर्थ हो गया, धनवान हो गया समर्थ हो गया। धनवान तो गुलाम है धन का, वो समर्थ गाएगा है, महान असमर्थ है। अगर पंच हो गया तो लोगों ने मान लिया पंच, इस वास्ते पंचायत दी हुई है, उसके पास में क्या समर्थ है? क्या पंच उतर जाए तो मिनिस्टर है, बड़ा समर्थ है, क्या झूल का समर्थ है? उस लोगों ने वोट दे दिया, समर्थ हो गया, खुद के समर्थ कहा समर्थ है? यह सब असमर्थ है, गुलाम है, उन गुलामों को समर्थ करते हैं लोग। धनवान ज्यादा है वो धन का गुलाम, पद की बड़े समर्थ है पद के गुलाम, पंच है जो पंचायती के गुलाम, पंचों गुलाम, जनिया के गुलाम, उनका नाम समर्थ है, उनका समर्थ नाम गुलाम का नाम समर्थ होता है? हम समझते हैं समर्थ वही हो गया सर, तो ये समर्थ नहीं होगा। समर्थ जो नीचे को ऊंचा उठा सके, अशुद्ध को शुद्ध कर सके, पवित्र को अपवित्र कर सके, उसको दोष नहीं लगता। दोष क्या लगे? तू तो जो शुद्ध करता है, अपवित्र को पवित्र कर दे, तो समर्थ ना उसका है। आप समर्थ लोगे धनवान ऐसा, ये समर्थ को ले दोष घुसाए, ऐसा जो है संबंध है समर्थ को ले दोष घुसाए, ये नहीं चलेगा। समर्थ ना भी नहीं उसका, वो तो गुलाम है, वो तो दास है, वो तो नीचा है। धनवान की सिवाय धन के और इज्जत क्या है? खुद की इज्जत है क्या? खुद की इज्जत है फजीती, वो मान लेता है इज्जत। धन के कारण से बड़ा हुआ, धन नहीं तो नीचा हो जाए, तो आदमी बड़ा हुआ कि धन बड़ा हुआ? थोड़ा विचार करो। पद बड़ा मिलने से बड़ा आदमी हुआ तो स्वयं बड़ा हुआ कि पद बड़ा हुआ? पद ही बड़ा हुआ। बड़ा नहीं हुआ तो वो बड़ा नहीं होता है। हाँ ये बात तू समझ जाता हो गया तू। अब उसमें समझते नहीं कि बड़े समर्थ को भी नहीं समझ सकते। रामायण सुपाया में कई जगत का श्लोक है, लोग हगाते थे बोल देते हैं बेहोशी से, जैसे कोई आदमी बेहोश बेचे थे और बोले ना, ऐसे बोलते हैं रामायण की सुपाही, ऐसे ही बोलते हैं गीता के श्लोक भी, ऐसे ही बोलते हैं। अनेक जन्म संसद पर एक जन्म में नहीं होता, अरे अर्थ है ही नहीं, बोलते ही नहीं, ऐसे समझ बोल देंगे। तो वो समझते नहीं इस बातों को भी, तो सर्द अवस्था कैसे समझे? अभी तो साधन की अवस्था ही नहीं हुई, तो वो अवस्था विचित्र होती है, उसको पूछना करना नहीं, उसको प्राप्त करना चाहिए। तत्व का विवेचन नहीं होता, तत्व की प्राप्ति होती है। नारायण 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 सुषुप्ति में, सुषुप्ति में एक शांति रहती है। कभी कभी आदमी कहता है आज तो बड़ी बड़ी सुख से नींद आई।
ये तो महाराज रोज कह सकता है?
रोज नहीं कह सकता।
नींद तो सब
सुख देती है। नहीं, सुख में आने पर भी सुख से नींद आई, आज तो अच्छी गहरी नींद आ गई, ठीक नींद आई, जिसमें सपना आता रहता, करता रहता, चिंता रहती, उसको सुख से नींद नहीं आती।
तुम्हारा जी स्वप्न अवस्था हुई?
नहीं, सुख अवस्था स्वप्न
सुसुप्ति है
ना,
वो भी भिन्न भिन्न होती है।
भिन्न भिन्न होती। एक सुसुप्ति बताऊं आपको, आप ध्यान दो थोड़ा, तो समझो, नहीं समझोगे। जैसे आदमी बहुत परिश्रम करके आया है, साल फिर करके आया है, और उसको थका हुआ है, और उसको नींद आवे, एक तो एक साधारण आदमी उसको नींद आवे, दोनों को नींद बरोबर आती है क्या? हाँ, तो बरोबर कैसे हो जाएगी? और भी भेद है, समय ज्यादा हो गया, और भी भेद है। पर बात ऐसी है कि जो थकावट उसकी, उसको नींद गहरी आवेगी, तो गहरी आवेगी नींद, उसको जैसे बहुत नींद आई स्थिति। ये तो अनुभव होता है आपको, हमारे को तो होता है, ऐसा हुआ है, हमने आपने दिखाई हुआ है, जो कभी कभी बड़ी नींद गहरी आती, अच्छी नींद आती। तो सुसुप्ति वाले को नींद गहरी आती, अच्छी आती। नारायण नारायण।